किस लिए सीख रहे हैं? खुदा से नजदीक जाना है? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, खुदा से नजदीक जाने के लिए सीख रहे हैं? बंदों की खिदमत करने के लिए सीख रहे हैं? अगर बगैर खिदमत के पैसे मिल रहे हैं तो कोई खिदमत करेगा? और अगर खिदमत करता रहे और कोई पैसा ना मिले तो अगले दिन करेगा? नहीं करेगा। नहीं, सिर्फ एक हदफ है, अपनी मादी दुनिया बनानी है। और उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो वाकई अच्छे हदफ पर भी हैं, अच्छे हदफ पर। मैं नहीं कह रहा यूनिवर्सिटीज में सारे काम गलत हो रहे हैं, नहीं, अच्छे हदफ पर भी बड़े अच्छे अच्छे पढ़ने वाले और अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन तादाद में ऐसे ही है जैसे आटे में नमक के बराबर है, बहुत कम। बस एक किस्म वो है जो आलिम रब्बानी, दूसरी किस्म वो है जो मुतअल्लिमुन अला निजात है, ऐसे मुतअल्लिम है जो निजात के रास्ते के ऊपर मौजूद है, सीखते हैं ताकि निजात हासिल करें। तीसरा इंसान कौन है? अब ये दो कितने होंगे पूरी इंसानियत में, कितने परसेंट होंगे? आलिम रब्बानी, मुतअल्लिमुन अला सबील निजात, कितने परसेंट होंगे पूरी इंसानियत 100% में? मैं बहुत, अगर अपने आप को मिसाल के तौर पर ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर जाऊं तो कहूंगा 1% शायद आलिम रब्बानी होंगे। मेरे ख्याल में शायद 1% भी होते तो दुनिया कुछ और हो जाती। कहूं कि 4% मुतअल्लिमुन अला सबील निजात होंगे शायद मिसाल के तौर पर, बाकी 95% क्या आएंगे? मौला फरमाते हैं हिमजुन रिआ क्या है? फरमाए पानी के किनारे पे जो घास उगती है ना, जिसकी बेसिस नहीं होती। अगर आपने कभी नेचर में, आप लोग घूमते रहते होंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं शायद यहाँ पर, तो कभी पानी कहीं बह रहा हो, कोई नहर या झील वगैरह हो, तो पानी के किनारे पर घास उगाती है। लेकिन अगर आप इस घास को पकड़कर खींचें, इसमें रूट्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती, यूं बाहर निकल आती है, दरख्त की तरह नहीं होती। दरख्त का पौधा जो होता है ना, उसमें बहुत तना उसका मोटा होता है, अगर आप उसे पकड़ के खींचे इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। जो हिमजुन रिआ होती है, यूं खींचने पे निकल आती है। तो इसके लिए मसलन अरबी में मकूला कहते हैं, मुहावरा कहते हैं कि अलगरीक यतशब्बसु बिलहशीश, यानी जो डूब रहा होता है वो तो घास भी पकड़ लेता है, जबकि इस घास से कोई डूबता वाला बचता नहीं है। तो ये इतनी बेबुनियाद होती है कि इससे किसी गरीब को निजात नहीं मिलती, किसी डूबने वाले को। लेकिन कहते हैं मुहावरे में कि डूबता हुआ तो घास भी पकड़ लेता है, ठीक है, इतनी बेबुनियाद होती है। और 95% इंसान क्या हुए? ये बेबुनियाद घास हो गए। अच्छा, ये बेबुनियाद घास क्यों है? इनके कोई उसूल नहीं है, इनके कोई कवानीन नहीं है, इनकी जिंदगी में कोई जाबिता नहीं है। अच्छा, उसूल जाबता कानून नहीं है तो क्या है फिर ये लोग? ये लोग जानवरों की एक फजीलत पे चल रहे हैं। वो क्या है? किसी को पेट भर के मजा आता है, किसी को सो के मजा आता है, किसी को जिंसियात में मजा आता है, किसी को ताकत दिखा के मजा आता है, किसी को नुमाइश में मजा आता है। जानवरों की तरह रह गए, उसूल नहीं है इनकी जिंदगी में। इनको मौला ने क्या फरमाया? फरमाया ये हिमजुन रिआ है। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक सवाल रख रहा हूं, हम कहां हैं? हम लोग कहां खड़े हैं? अच्छा, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं कि हम कहां खड़े हैं, अगला सवाल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हमें पहुंचना कहां है? ये कि हम कहां खड़े हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमें पहुंचना कहां है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फासला ब्रिज कैसे होगा? शायद ये जानना मुश्किल नहीं है हम कहां हैं, तकरीबन आसान है। अगर थोड़ा सा इंसान के अंदर इंसाफ हो तो फौरन समझ जाता है कि भाई मैं कौन हूं। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी है कि वो अपने आप को पहचान सकता है। फरमाता है इन्नल इंसान अला नफ्स ही बसीरा वलो अलका माअदीरा। इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है, गरचे उज्र पेश करता रहता है। तो वो एक्सक्यूजेस तो देता रहता है अपने किसी बड़े के सामने कि मैं अपने आप, अपने लिए भी एक्सक्यूज देता रहता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम आता है जब उससे पूछा जाए तुमने नहीं पहचाना तुम कौन हो, तो अंदर अंदर घर से सामने गर्दन नहीं हिलाएगा, अंदर अंदर गर्दन हिला के कहता है हाँ मुझे पता है मैं कौन हूं, अब मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं वो नहीं हूं जिसको होना चाहिए था। ये इकरार भी दूसरे के सामने ना करे अपने अंदर जरूर कर ले। क्योंकि एक बात बहुत तयशुदा बात है, वो ये कि अगर बीमार बीमारी कभी इकरार ना करे तो कभी सेहतमंद नहीं होगा। जो बीमार को पहली चीज चाहिए वो ये कि इस बात का इकरार कर ले कि भाई मैं कुछ बीमार हूं, इंटेंसिटी नहीं मालूम मुझे, इलाज भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कुछ बीमारी है। अच्छा, अब जब बीमारी समझ में आ जाए, बीमारी का इकरार कर ले, तो फिर दूसरी बात ये पूछे अपने आप से, मैं बीमार हूं तो सेहतमंद कौन होता है? वो जो सेहतमंद होता है वो कौन होता है? और फिर तीसरी बात आएगी, ये बीमारी उस सेहत तक पहुंचेगी कैसे, कहां पहुंचना है? चौथा सवाल मैं नहीं करूंगा, खुद ब खुद वाजे है वही कि अगर मैंने ब्रिज नहीं किया और इसी बीमारी पे मर गया तो क्या होगा? इस सवाल को मैं नहीं कर रहा कि इसमें कुछ चीजें बहुत वहशतनाक हैं। मैं एक दफा एक जगह पे मजलिस पढ़ने गया, मैंने कुछ अखलाकी मसाइल बयान किए, एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, कल्चर ब्यूरोक्रेट्स में अच्छा होना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बाल वो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो हमारे सामने आए, मुझसे कहने लगे मौलाना साहब अखलाक पे गुफ्तगू मत किया करें, आप तारीख पे बात किया करें, आप कुछ और चीजों में। मैंने कहा क्यों? कहने लगे उससे तबीयत में इख्तलाज होने लगता है, तबीयत घबराने लगती है। तो ये चौथा सवाल बहुत ही खतरनाक होता है, इससे बहुत तबीयत घबराने लगती है। इसलिए मैं चौथा सवाल नहीं कर रहा कि खुदा ना करे नाउज बिल्ला अगर बीमारी को का इलाज नहीं किया होना क्या है फिर। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद चूंकि आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में एक हदीस अर्ज करता हूं जो बहुत अच्छी फाउंडेशन बनती है इन चारों सवालात का जवाब देने के लिए। हम कहां खड़े, हमें कहां पहुंचना चाहिए था, ये बीच का रास्ता कैसे तय होगा, खुदा ना करे नहीं हिले अपनी जगह से तो फिर हमारे साथ क्या होने वाला है। चारों सवालात किसी हद तक इस एक रिवायत से हल होने की तरफ जाते हैं। रिवायत थोड़ी सी तुलानी है, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर इसको बयान करूंगा, आज के पहले दिन के लिए एक अच्छी फाउंडेशन बनती है हमारे पास। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, अच्छा ऐसा है कि हमने ये सोचा था कि हम पहले दिन के लिए 35-40 मिनट्स और ज्यादा से ज्यादा अगर गया तो 45 मिनट्स उसके अंदर मामले को इख्तिताम तक लेके जाएंगे, और जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि तकरीबन आधे घंटे से ऊपर तो अभी तकरीबन हो रहा है जो मेरा अंदाजा है। तो हम क्या करते हैं कि इस रिवायत को जल्दी में बयान नहीं करते, या ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा बयान कर लेते हैं और बाकी को कल के लिए रख लेते हैं ताकि हम आज पहले ही दिन वक्त से बहुत आगे ना निकल जाए। ये रिवायत जो है इसके अंदर इंसान की रूह को इंसान के बदन से तशबीह दी गई है, इंसान की रूह को इंसान के बदन से तशबीह दी गई है। अच्छा होता यह है कि बाज़ औक़ात कोई बहुत अहम मौजू अगर जल्दी में बोल दिया जाए तो अहमियत खराब हो जाती है, उसका मजा फिर इतना ज्यादा नहीं आता। तभी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस रिवायत को पूरा नहीं बोल रहा, ताकि ऐसा ना हो कि भाई बहुत जल्दी में अगर आपने कोई बात कही तो फिर उसका लुत्फ भी नहीं आता, वो असर भी नहीं पड़ता। तो सिर्फ इतना ही सुन लीजिए कि एक रिवायत है जिसके अंदर जिस्म की हालतों को रूह से तशबीह दी गई है। अब जो इंसान होता है ये अपने बदन के अंदर कभी सोता है कभी जागता है, कभी बीमार होता है कभी सेहतमंद होता है, कभी मर जाता है कभी जिंदा होता है। आप आराम से सुकून से ये छह हालतें आप इंसान के अंदर देख सकते हैं। एक और होती है, कभी देख रहा होता है लेकिन गाफिल होता है, यह हालत भी समझ में आती है ना। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात होता है इंसान कहीं सोच रहा होता है और कहता है क्या टाइम है, और जब कह रहा होता है कि क्या वक्त हुआ है तो सामने घड़ी ही को देख रहा होता है। भाई जब तुम घड़ी को देख ही रहे थे तो फिर पूछ ही क्यों रहे थे? इसका मतलब यह है कि बहुत बहुत एक अजीब फायदा उठा सकते हैं आप इस जगह से, इस मिसाल से। और ये बड़े असाध्या ने बहुत पॉइंट के एक मतलब के लिए कही है, वो ये है कि इल्म इसका मतलब है मटेरियल नहीं है, इल्म नॉन मटेरियल है। अगर इल्म भी मटेरियल होता तो जब ये घड़ी देखकर टाइम नहीं समझ पा रहा होता तो तमाम मटेरियल रीजनिंग ये कह रही होती है कि इसको वक्त समझ में आ जाना चाहिए था। इसकी आंखें देख रही हैं, घड़ी की सुइयां नजर आ रही हैं, घड़ी की सुइयों का यहां पर होने का मतलब क्या होता है इसको पता है, लेकिन फिर भी इसको इल्म नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? इल्म मटेरियल नहीं है, इल्म कैमरे की तरह नहीं है। अगर आप कैमरा चला रहे हैं ना, तो कैमरे की जद में जो कुछ आएगा वो कैमरा उसको पिक कर लेगा। ये नहीं होगा कि कैमरा तवज्जो देगा तो पिक करेगा, नहीं तवज्जो दी तो पिक नहीं करेगा। नहीं नहीं, जो कुछ भी आएगा वो पिक करेगा। अगर इंसान का इल्म मटेरियल होता तो घड़ी देखते वक्त क्यों पूछ रहा होता है टाइम क्या हो रहा है। ये स्कैन होकर इसकी नजरों के सामने आ गई है, इसका इल्म खुद ब खुद इसके दिमाग में आ जाना चाहिए था। इसका मतलब है इसके सिवा कुछ और चाहिए जिसका ताल्लुक मादे से नहीं है। तो ये सब हालतें इंसान के अंदर होती हैं। इसी तरह इंसान की रूह होती है, इंसान की रूह भी बिल्कुल ऐसी होती है, कभी सोती है कभी जागती है, कभी बीमार होती है कभी तंदुरुस्त होती है, कभी तवज्जो देती है कभी गाफिल होती है, और कभी जिंदा होती है और कभी मर जाती है। इस पे इंशाल्लाह कल गौर करेंगे। ये जो फर्श अज़ा है ये क्या है? ये जिस्मों का काम नहीं है, ये रूहों का काम है। ये जिस्म का काम नहीं है। आप इसको बहुत अजीब तरीके से देखेंगे, ये जिस्म का काम है ही नहीं असलम, ये रूह का काम। और अगर मैं एक और जुमला इसमें इजाफा करूं, असल अहले बैत की मोहब्बत जिस्मों का काम नहीं है, ये रूहों का काम है। और बेहतरीन मोहब्बत वो होती है जिसमें ताल्लुक और राबिता जिस्म और अल्फाज का नहीं होता, रूह का होता। बेहतरीन मोहब्बतें वो होती हैं, जो मोहब्बतें जिस्मों से की जाती हैं ना, वो जिस्मों पे मर जाती हैं, और जो मोहब्बतें रूहों से की जाती हैं, रूहें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्यों 1400 साल के बाद आप इमाम हुसैन के लिए रो रहे हैं? मोहब्बत जिस्म से नहीं है, मोहब्बत रूह से है। ये रूहों की मोहब्बत होती है, और ये बड़ा अजीब होता है। अच्छा, इस मोहब्बत में जाहिर में कोई जबान नहीं होती, अंदर अंदर बड़ी जबानें होती हैं। ये जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी है, तुर्की का शायर, इसके बारे में कुछ लोगों के जहन में है कि शायद बहुत अच्छा आदमी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बुरा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है। इसने बहुत अच्छे अशार कहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने, मौलाना रूमी के नाम से मशहूर है। और इसने एक जगह के ऊपर बड़ी अजीब बात कही, कहा कि इश्क रहा खुद सच जबानी दीगर रास्ते, यानी इश्क की जो जबान होती है वो लैंग्वेजेस में लिमिटेड नहीं होती, इश्क की अपनी एक जबान होती है। तो बड़ी खूबसूरत एक बात थी। तो मुझे इस एक दोस्त ने इस बात की एक अजीब दलील दी, करके उसको शेर नहीं पता था बंदे खुदा को, बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, लेकिन उसको फारसी नहीं आती तो उसको शेर नहीं पता था, लेकिन उसने दलील बड़ी अजीब दी जिससे साबित हो रहा था कि वाकन इश्क रहा खुद सत जबानी दीगर रास्त, इश्क की अपनी 100 जबान है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं हर चेहलुम पर सईदुश्शोहदा के रोजे पे जाता था। उसने कहा कि मैं हर चेहलुम पर सईदुश्शोहदा के रोजे पे जाता, अभी भी जाता है। और कराची में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका वो डायरेक्टर है, और माशाल्लाह पोस्ट PhD किया हुआ है, 20-25 मुल्कों में लेक्चर्स दे चुका है, और काबिल आदमी है माशाल्लाह, और इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी है उसके अंदर। तो कहने लगा कि मैं हर चेहलुम पर इमाम के रोजे पे जाता हूँ। तो वहां पर कहने लगा मेरे साथ एक तजर्बा होता है, बहुत माकूल आदमी, उसने कहा मेरे साथ एक तजर्बा होता है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो तजर्बा क्या है? कहने लगे कि मैं सईदुश्शोहदा के रोजे के सामने खड़ा होता हूँ जोहर के बाद, और वहां जाकर कुछ नहीं करता, दोनों हाथ से मैं कहता हूं या हुसैन मातम करता हूं। और ये बंदे खुदा मुझे बता रहे, कहने का मौलाना अजीब बात ये है, कई साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, मैं या हुसैन कहता हूं, कोई एक लफ्ज आगे पीछे नहीं कहता। और कहने का जब मैं मारना शुरू करता हूं ना या हुसैन, तो मैं देखता हूं दो आदमी मेरे साथ आते हैं, चार आते हैं, पांच आते हैं, और कहने का असर तक ये आलम होता है कि हजारों लोग सिर्फ या हुसैन पे मातम कर रहे होते हैं। इनमें से कोई उर्दू बोलने वाला होता है, कोई अरबी बोलने वाला होता है, कोई फारसी वाला होता है, कोई इंग्लिश वाला होता है, कोई कौन कौन सी जबानें बोलने वाले होते हैं। इसने जब ये जुमला कहा ना, तो मुझे फौरन समझ में आया, मौलाना रूमी ने कहा था ना, इश्क रहा खुद सत जबानी दीगर रास्त, इश्क की खुद 100 जबानें। ये जो इमाम हुसैन है, ये इश्क की एक जबान है, ये इश्क की एक जबान है, इसमें एक जज्बा है। ये इंसानों को एक ऐसे अजीब तरीके से खींच लेता है, कोई आशिक इंसान हो, जज्बा रखता हो, वो सईदुश्शोहदा से दूर नहीं जा सकता। خود بخود شہید و شہدا کے نزدیک جائے گا. اور ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں, ان کی زندگی بھی ایسی ہے. مسلسل قربانی ہے, مسلسل قربانی. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے, اس روایت کے اندر لکھا ہے خدا تعالیٰ نے کہ جب بہت طولانی ایک سلسلہ بیان کیا, اس کے اندر لکھا ہے جب میں کسی کو چاہتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں. جب خدا کسی کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے, اسے شہید کروا دیتا ہے. اور امام حسین سید الشہداء ہے. کتنا ٹوٹ کے امام حسین نے خدا کو چاہا ہوگا اور کتنا ٹوٹ کے خدا نے ان کو چاہا ہوگا. خدا نے کہا میں جس کو چاہتا ہوں اس کو شہید کر دیتا ہوں. اور سید الشہداء صرف شہید نہیں ہیں, شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء. کیوں خدا نے اتنا ٹوٹ کے چاہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے. شب اول محرم ہے اور میں بہت زیادہ معتقد ہوں اس بات کا, شب اول محرم میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھے جانے چاہیے. قربانیاں وہاں سے شروع ہوئی ہیں. اکسٹھ ہجرا کی کربلا 11 ہجرا سے شروع ہوئی. کربلا بی بی سیدہ سے شروع ہو گئی تھی. شب اول ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ودا کی شب ہے. ہمارے پاس اس پورے واقعے کربلا کے اندر کچھ مناظر ایسے ہیں جو انسانوں کے ذہنوں کے اوپر ثبت ہو گئے, نقش ہو گئے جیسے. اور ان مناظر میں سے ایک منظر وہ ہے جب سید الشہداء نے مدینہ کو الوداع کیا ہے. سید الشہداء جب مدینہ میں رہ رہے تھے تو بالکل ایسا تھا جیسے اللہ کے رسول مدینہ کے اندر رہ رہے تھے. لوگ سید الشہداء کا ایسے احترام کرتے تھے, سب کو پتا تھا کوئی مشکل کہیں حل ہو یا نہ ہو, اگر حسین کے دروازے پر پہنچ گئے پھر اس نے حل ہونا. ہمارے پاس عجیب روایتیں ہیں اس خاندان, عظیم الشان خاندان کے لیے. ایک روایت میں لکھا ہے, یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے لیے, ایک روایت میں لکھا تھا کہ حضرت علی اکبر مدینے کے اندر مدینے کی سرحدوں کے اوپر جا کر اونچی اونچی مشعلیں روشن کرتے تھے کہ اگر کوئی مسافر بھوکا ہو تو میرے پاس آ جائے گا, میں کھانا کھلاؤں گا اسے. اہل بیت کا گھر مدینے والوں کے لیے پناہ گاہ تھی, نہ صرف مدینے والوں کے تمام اطراف کے لیے پناہ گاہ تھی. لوگ یہاں کے پناہ لیا کرتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا, ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں نے ایسے روئے ایسے کہ جیسے اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تھے ایسے روئے. پھر سید الشہداء الوداع کر رہے تھے. سید الشہداء کے الوداع میں جو دو مقامات میں سن میں آتے ہیں انتہائی عجیب مقامات ہیں. ایک وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے روضے پر گئے الوداع کے لیے. سید الشہداء کا سن مبارک اس وقت 60 سال کے نزدیک ہے, لیکن یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام حسین اپنی والدہ کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بچہ ماں کو دیکھتا ہے, ایسے ہی چاہتے تھے. لہذا راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی ماں کے روزے کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. دو مصائب کی بس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک وہ منظر تھا یہ جو سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا. اب میں دو منظر اور دکھاؤں گا آپ کو الوداع کے لیے. دو منظر وہ ہیں جہاں سیدہ نے اپنے بچے کو الوداع کیا. بڑا عجیب ہے یہ. ان میں سے کوئی بھی الوداع جدائی میں نہیں تھا, یہ بہت عجیب تھا. یہ الوداع کہتے تھے ایک دوسرے سے, جدا نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ دنیا میں الوداع کہتے ہیں جدا ہوتے ہیں. یہ الوداع کہتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے.
وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے بچوں کو کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو. مولا سید الشہداء قریب تشریف لائے اور کہا کہ جب تک میری ماں الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا. عزیزو بعض روایتیں دوسرے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں, بعض روایتیں خود معصومین نے ہمیں بتائی ہیں. یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ امیر المومنین سے منقول ہے, کہا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا. فرمایا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا, بچے کو اپنے آغوش میں لیا تھا. یہ ماں نے الوداع کیا ہے, یہ ماں کا الوداع کتنا سخت تھا. روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ندائے غیبی آئی دی امیر المومنین سے, کہا تھا کہ اے علی بچے کو علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ جائے گا. یہ برداشت نہیں ہو پائے گا. اب یہ بی بی سیدہ کا الوداع تھا, وہ مولا سید الشہداء نے الوداع کیا, لیکن کیا جدا ہوئے. دو الوداع دیکھ لیا آپ نے, کیا جدا ہوئے. اب شب عاشور کی بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام. شب عاشور مولا سید الشہداء تاریکی میں ایک موقع کے اوپر آگے بڑھے, ماننے والا ایک پیچھے پیچھے دیکھتا ہے مولا سید الشہداء اکیلے میں آگے جا رہے ہیں, ڈرتا ہے کہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے, پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. نزدیک آتا ہے مولا سعید الشہداء, کہتے ہیں فلانی تم پیچھے آ رہے ہو سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آ جاتا ہے, کہتے ہیں کیوں آئے میرے پیچھے. کہتے ہیں مولا میں ڈر رہا تھا کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. ایک موقع کے اوپر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں, دونوں خاموش ہوتے ہیں تو جو ساتھ آیا تھا یہ سعید الشہداء سے پلٹ کے کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ تو سناٹے کی جگہ ہے, یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے, لیکن ایسا لگ رہا جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بس مولا سعید الشہداء فرماتے تو نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں کی آواز, میری ماں رو رہی ہے ابھی بھی. دیکھو الوداع نہیں ہوا نا, الوداع نہیں ہوا, بس ایک اور وقت دکھاتا ہوں. وہ وقت آیا جب بی بی زینب بازاروں سے گزر رہی تھی اور یہ ماں بار بار ہمت دلا رہی تھی دیکھ زینب تو اکیلی نہیں ہے, تیری ماں ساتھ ہے.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. تو نے غم حسین میں رونا نصیب فرمایا, قیامت تک حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں قرار فرما. خدایا حب حسین کی راہ میں, امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ.